Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Vishwam Darpan Drishyaman Nagari तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि माया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विहाय पीयूषरसं मुनीश्वराः ममाङ्घ्रिपादा ममाङ्घ्रिराजीवरसं पिबन्ति किम् इतस्वपादाम्बुजपानकौतुकी सगोपवारः श्यमातनोतु वः परम प्रेमास्पद परमात्मस्वरूप तो चल रहा था कैवल्योपनिषद, जीव की अवस्थाओं का वर्णन चल रहा है। अवस्था एक जागृत होती है, एक स्वप्न होती है, एक सुसुप्ति होती है। कल आपने सुना था सयो माया परिमोहित आत्मा शरीर मास्थाय करोति सर्वम। क्या क्या करता है वो शरीर से तादात्म करके वही जीवात्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड अद्वय अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप है वही जीव बन जाता है। माया से मोहित होकर के वही जीव बन जाता है। और फिर जीव बनने पर शरीर मास्थाय करोति सर्वम, शरीर के साथ तादात्म करके भोग भोगता है। क्या स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोग ही सैव जागृत परितृप्ति मेति, वही जागृत अवस्था में नाना प्रकार के भोगों को भोगता रहता है। स्त्री है, अन्न है, पान है, ये सब भोगता है। तो ये जागृत अवस्था में भोग भोगता है स्थूल शरीर से, अन्नमय कोष से। इसमें अन्नमय कोष रहता है। ये जो हाथ सामने दिख रहा है ये अन्नमय कोष है, क्योंकि अन्न से परिपुष्ट है। अब ये किताब उठाते हैं तो उठाने की पहले इच्छा हुई तो ये मनोमय कोष है, उठाने में जो ताकत लगी ये प्राणमय कोष है, और ये पुस्तक ही है, सर्वविच्छी नहीं है, ये विज्ञानमय कोष है। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये अन्नमय तो हो गया स्थूल शरीर, और बाकी तीन जो हो गए ये सूक्ष्म शरीर। और आनंद का भोक्ता सुसुप्ति अवस्था में होता है। तीन अवस्थाओं का मांडूक में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है, पंचदशी में भी है, विस्तार से वर्णन है कि वही जीव, वही आत्मा माया से या विद्या से मोहित होकर के विचारा जीव हो जाता है, और फिर नाना प्रकार के भोग भोगता है, और तृप्तम इति, तृप्ति को भी प्राप्त होता है थोड़ी देर के लिए, क्षणिक। जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोगई, इन विचित्र विचित्र भोगों से थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता। स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोगता सुमाया कल्पित जीव लोके, और उसी की जो अवस्था जिसकी जागृत थी उसी की स्वप्न में भी होती है। अब देखो ये जागृत अवस्था तो स्थूल शरीर की हो गई, अन्नमय कोष। इसमें जो कुछ भी देखता है, सुनता है, इंद्रियों से ग्रहण करता है, वो सब स्थूल शरीर के द्वारा करता है। मांडूक में इसका वर्णन आया कि वो बहिष्प्रज्ञ है और सप्तांग है, सिर से लेकर के पैर तक ये सात अंग है, और एकोन विंशति मुख, 19 मुखों वाला है। अब ये भोग करता है, स्वप्न का भी वही है, सप्तांग है, 19 मुख वाला है, 19 माने 5 प्राण, 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19 हो गए। ये स्वप्न में भी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन का देखने वाला एक ही दृष्टा है, एक ही चेतन है। तो स्वप्न में और जागृत में अंतर क्या, जब एक ही दृष्टा दोनों का है तो जागृत में और स्वप्न में इतना अंतर है कि जो चेतन मन है उसका नियंत्रण चित्त पर नहीं रहता है। इसलिए चित्त माने है स्टोर, एक वासनाओं का संग्रह जिसमें रहता है उसको चित्त बोलते हैं। ये तीन शब्द हैं संस्कृत व्याकरण के हिसाब से, एक है चित्त, तामता है चित्त, और एक है चित्त जो ताहल होता है, और एक है चित्त जिसमें आ मिला हुआ है, चित्त है पूरा। तो ये तीनों को चित्त जिसमें आ मिला हुआ है, चित्त है उसमें तो उपसर्ग लगाया जाता है, उसको संचित बोलते हैं, वो उपसर्ग के बिना नहीं रहता, उसमें सम उपसर्ग लगा दिए तो संचित माने इकट्ठा किया हुआ, संचित है माने धन है, रुपया पैसा है, सामग्री है, ऐसे। और जो ताहल है चित्त, उसका माने वह है चेतन। और ये जो चित्त है, जैसे दो पहलवान लड़ते हैं ना, तो कभी देखा गया कि जो इसका ऊपर का मुंह हो जाता है उसको चित्त बोलते हैं, बोले अब ये हार गया। तो जब हमारे चित्त का विषयोन्मुखी चित्त हो जाता है तो उसको चित्त बोलते हैं, विषयों की ओर देखने लगा तो वो हार गया। क्यों हार गया, दुखी होता है, नाना प्रकार के दुख भोगता है। तो कब भोगता है, जो अखंड अद्वैत सच्चिद आनंद स्वरूप था वो विषयों की ओर हो गया, तो विषयों की ओर मुख होने के कारण वो चित्त हो गया, हार गया बेचारा, दुखी हो गया। ये जागृत अवस्था की स्थिति है। स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता सोमाया कल्पित जीवलोके, स्वप्नावस्था दूसरी अवस्था है, वो भी जीव की है। जब शरीर के साथ तादात्म कर लेता है तो वही सच्चिदानंद परमात्मा बेचारा जीव बन जाता है। अब जीव जब बन गया तो उसकी अवस्थाएं भी आई, तो अब दूसरी अवस्था आई स्वप्न। ये स्वप्न में क्या करता है, सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि सुमाया कल्पित जीवलोके, दुनिया की चीजें सब बना लेता है। तो चित्त में तो पहले से वासनाएं हैं ही हैं, चित्त माने ये संग्रह, संग्रह स्थान, मेडिकल स्टोर जैसे होता है ना, तो मेडिकल स्टोर में हर तरह की दवाई रखी रहती, उसमें जिलाने की भी है, मारने की भी है। इसी तरह से चित्त में बहुत प्रकार की वासनाएं रहती हैं, सात्विक भी रहती हैं, सात्विक, राजस, तामस, इच्छैवि सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्तेवेति तान विद्धि। वो सब आत्मा के ही रूप में हैं, तो वो सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार की वासनाएं उसमें रहती हैं। होता क्या है कि चेतन मन नियंत्रण रखता है, अभी वासना निकालो अभी न निकालो, लेकिन स्वप्न में वो स्वतंत्र हो जाता है चित्त, क्योंकि वो मनीराम चेतन मन नियंत्रण नहीं रख पाता। बस इतना ही अंतर है, अब इसको ध्यान दो। चेतन मन जब चित्त पर नियंत्रण रखे तो जागृत, और जब चेतन मन नियंत्रण न रख सके तो स्वप्न। इतना ही अंतर है। रही बात देश काल की, तो देश काल की तो ऐसी बात है भाई कि थोड़ा सा काल का फर्क हो सकता है। कई बार स्वप्न देखते हो तो पचासों वर्ष की बात जरा देर में हो जाती, तो काल का थोड़ा फर्क है। अब जब चेतन मन नियंत्रण चित्त पर नहीं रखेगा तो वो क्या करेगा, 19 माने 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19 मुख वाला है ये, 7 अंग सिर से लेकर के पैर तक, सप्तांग कहा जाता, और 19 मुख। तो वासनाओं से प्रेरित होकर के ये जीव बिचारा नाना प्रकार की चीज देखता है। अब चित्त में तो वासनाएं पहले से भरी, वो निकालता रहता है जो आ गया। कुछ आयुर्वेद वालों ने स्वप्न की अवस्था का वर्णन करते समय लिखा, उनके यहां वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, तो जैसे आकाश में उड़ रहे हो, कभी कभी मालूम पड़ता उड़ते हुए दिखाई देते, तो ये उड़ना वायु दोष है, आगे वायु बढ़ जाएगा, बात बढ़ जाएगा। कभी पैर पानी में तैरते हुए दिखता है तो ये कफ है, आगे कफ बढ़ेगा, और कभी आग जलती हुई दिखाई देती है तो ये पित्त है। तो आप अंदाज ये लगा सकते हैं कि ये दोष बढ़ने वाला है, तो बीमारी से सावधान हो सकते हो। लेकिन यहां वेदांत दर्शन से दृष्टि ये होती है कि ये सब हमारे चित्त में वासनाएं हैं, और उन वासनाओं को ले ले करके उड़ता है, न जाने क्या क्या दिखता रहता है, इंद्रियों से भोग भी करता है, और नया आकाश, नया पाताल, नया धरती, सब नया बना लेता है। सुमाया कल्पित, अपनी माया के द्वारा अपने आप चित्त में से वासनाएं जो हैं उनके द्वारा ये तमाशा रचता है। अच्छा, तो नाना प्रकार के भोग भोगता है, और कभी कभी स्थूल शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जो गहराई से हो जाता है, पड़ता है। कभी भी आपने देखा होगा जोर से चिल्लाए पड़ता है, कोई भय आया, भयभीत होने से चिल्लाए पड़ता है, जोर से चीखा, देह कांपने लगती, तो स्थूल शरीर पर भी प्रभाव पड़ जाता। कोई शेर आया और उसने देखा तो कांपने लगा। बच्चों को प्रायः ऐसा होता है, बच्चे चीख पड़ते हैं, अरे बचाओ बचाओ, ऐसा हो जाता है। ये क्या बात है, बोले चूंकि स्थूल शरीर में जो चिंतन किया है वही ना वासनाएं आई, तो वासनाएं तो हई हैं, इसलिए जब गहराई से आता है तो स्थूल शरीर पर भी प्रभाव पड़ जाता। ऐसी कई चीजें, कई इंद्रियों का देखा गया, स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कम पड़ता है। और एक बहुत मजे की बात है कि स्वप्न की बात जागृत में तो थोड़ी देर याद रहती है, लेकिन स्वप्न के समय में जागृत की बिल्कुल याद नहीं रहती। इसका कारण समझे, स्वप्न में जो जागृत में आपने देखा है वही सब दिखता है, चिंतन वही है। अब कई बार आप देखेंगे दिन में आप चिंतन करते रहोगे किसी बात का, वही सपने में आने लगे। एक माई 9 दिन तक नवदुर्गा में व्रत रहे और रात में खूब डट के खाए माने सपने में, तो हमसे कहा कि हमको तो ये आता है कि नाना प्रकार के पकवान हैं और हम खाए रही, तो इसका मतलब ये कि जागृत में जिसको नहीं दिया खाने को सपने में खा रहा है खूब डट के। तो प्रायः ऐसा होता है कि जागृत में जो चिंतन होता रहता है वो स्वप्न में होता है, लेकिन स्वप्न की बात जागृत में तो आ सकती है, लेकिन जागृत में जागृत अवस्था का चिंतन स्वप्न में बिल्कुल नहीं होता। क्यों उसका? अच्छा, और स्वप्न में जो देखा हुआ गहराई से तो स्थूल शरीर पर भी अंतर पड़ता है, लेकिन ये बात क्या है आखिर? तो जो चेतना है वो क्षेत्र है, ये समझने की बात है। वैसे चेतना को प्रायः आजकल जो पाश्चात्य दार्शनिक लोग हैं ना, वो कहने लगते हैं चेतना है चित्त। अरे चेतना तो क्षेत्र है, इंद्रियाणि दशैकंच, देखो मनोबुद्धि रेव च, आया ना, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। चेतना भी है, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, ये एतद क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। ये 13वें अध्याय गीता में स्पष्ट है चेतना। तो उस चेतना का, जिस चेतना का प्रभाव पड़ता है, वो चेतना उस समय चेतित रहती है कि अचेतित रहती है, विचार करना। क्यों? बोले बात यह है कि जब स्वप्न के समय में आप चारपाई पे पड़े हो, आपका स्थूल शरीर तो पड़ा है, लेकिन नया आकाश नया पाताल नई इंद्रियां सब पूरा का पूरा तमाशा बन जाता है। ये तो रोज प्रैक्टिकल है, ये प्रयोगशाला है। तो स्वप्न में आपने जो देखा, थोड़ी देर जागृत में भले भूल जाए लेकिन थोड़ी देर याद रहता, आज हमने स्वप्न में ये देखा। लेकिन जैसे स्वप्न में देखा ऐसे ही जागृत की बात उस समय नहीं आती, तो वो स्थूल शरीर पर की जो चेतना है, जैसे अभी आपने सुना कि चेतन मन का नियंत्रण चित्र पर नहीं रहता, तो चित्त पर नियंत्रण यदि रहेगा, कई बार आपने देखा पुनर्जन्म की बात याद रहती है कि हम अमुक जन्म में पैदा हुए थे अमुक घर में, कई बच्चे बता देते हैं और बात सही निकल जाती है। पूर्व जन्म की बात बताई कि वो मैं अमुक घर में था और ये था, सब पूरा का पूरा विवरण बता देता है, लेकिन छोटी अवस्था में शुरू में, फिर बाद में भूल जाता है। तो जैसे ये पुनर्जन्म की बात बता देता है, ऐसे स्वप्न की भी बात है, वो भी तो स्वप्न ही सा है एक तरह का, लेकिन यही बात सब सुसुप्ति में नहीं रहती। सुसुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूता सुख रूप मेति। बड़ा सुंदर वर्णन आया कि देखो सुसुप्ति काल भी होता है, जैसे जागृत है स्वप्न है तैसे सुसुप्ति है। सुसुप्ति काले सकले विलीने, सुसुप्ति काल माने गहरी नींद, गहरी नींद में सब समाप्त हो जाता। और एक और बात है कि स्वप्ने जीवा सैव जीवा, वही जीव वो जो आत्मा था वही जीव बन गया। तो सुख दुख भोगता, सुख और दुख का भोक्ता बनता है और सुषुप्ति में केवल सुख का भोक्ता बनता है। बोले ये क्यों बेईमानी है? कहा बेईमानी नहीं है, दुख असल में अन्न से मिलता है, ये बात जान लो। ये जो सुख दुख हैं सो अपने से नहीं अन्न से मिलते हैं। दुख जब मिलेगा तब तो किस दूसरे से मिलेगा, और सुषुप्ति काल में दूसरा कोई रहता ही नहीं है। सुषुप्ति काल में तो आप ही अकेले रहते हैं, इसलिए आनंद भुक बताया, आनंद का भोक्ता, आनंद का भोक्ता है वो। और उस समय सुषुप्ति काल में सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में जो अविद्या है, अहंकार रूप है, वासनाएं वो रहती हैं। अविद्या रहती, अविद्या माने अज्ञान, क्या कि मैं हूं तो शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद नित्य शुद्ध बुद्ध, और बन गया विकारी, निर्विकार होकर के विकारी बन गया, असंग होकर के शरीर के साथ सट गया है? और अपूर्ण कहने लगा, अल्पज्ञ कहने लगा, हाय हाय मैं तो अधूरा ही हूं, और आप सर्वज्ञ हैं, पूर्ण होकर के अपूर्ण बन गए। क्या विचित्र खेल हो गया, पूर्ण होकर के अपूर्ण बन गए, और सत होकर के असत बन गए, चिद होकर के अचिद बन गए, और आनंद स्वरूप होकर के दुख रूप बन गए। तम विभूता तम से अंधकार से जैसे कोई अभिभूत होए, तो अंधकार में जैसे कमरे में किसी में अंधकार है तो उसमें आप अंधकार को ही देखोगे। हैं तो सब चीजें वहीं को वहीं रखी हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से सुषुप्ति काल में अज्ञान के कारण तमो विभूतः, तम से अंधकार से अज्ञान से अभिभूत होने के कारण सुख रूप में थी। अब जरा इन तीनों अवस्थाओं पर थोड़ा विचार करते हैं। जागृत अवस्था जो होती है वो तो आपने सुना स्थूल भूख है, स्थूल शरीर के अनुसार ये, तो स्थूल शरीर में जो जागृत अवस्था होती है नाना प्रकार के भोग भोगता रहता है। क्यों भाई भोग कर रहे हो? बोले वाह, खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे क्यों कर रहे हो? तो बोले वाह, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो करना खाने के लिए और खाना करने के लिए, बस इतना सीमित रहता है। वो भूल ही गया कि हम आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हम तो शरीर के साथ मिल गए, शरीर मास था है। शरीर के साथ मिल गए और शरीर के साथ मिल करके हम भोगी बन गए, बनना चाहिए था योगी। तो जो नित्य योग परमात्मा के साथ सा, सो अनित्य प्रकृति के साथ योग कर बैठे,